यीशु मसीह संसार में परमेश्वर के कार्य को पूरा करने आए थे। ये जो अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना में की, इसके विषय में लिखा है कि यह पहला ऐसा चिन्ह था जो प्रभु ने वहां पर दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की। चिन्ह शब्द यूहन्ना के लेख के लिखने वाले यानी यूहन्ना जो लेखक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक चिन्ह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा और अपने संसार में आने के उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम को दिखाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए संसार में आए थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम को पूरा कर इस बात को दिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह गुणवत्ता परमेश्वर है। He is the Lord of quality. प्रभु यीशु मसीह गुणवत्ता प्रभु है। हम लोग क्वालिटी पर बहुत जोर देते हैं, है ना? और क्वालिटी कंट्रोल का आजकल का जो माइन है वो बहुत बढ़ गया है। पहले पहले ISI मार्क होता तो बहुत जल्दी हम लोग उसको ग्रहण कर लेते थे, परंतु आजकल ISI कोई नहीं पूछता, सब लोग ISO 9002, है ना? हमारे स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी का बहुत बढ़ गया। परमेश्वर गुणवत्ता परमेश्वर है, गुणों पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। और यह चिन्ह जो पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दिखाया, उसने उस गुण को प्रकट किया कि परमेश्वर कितना इस बात पर रुचि रखता है। हाउ मच इज कंसर्न अबाउट क्वालिटी। वो चिन्ह क्या है हम सबको मालूम। बचपन से अगर हम मसीह परिवार में पले हैं तो हम सबको ये घटना मालूम है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया यहां पर बच्चों, क्या किया था? दाखरस को पानी में बदल दिया, है ना? क्या किया था? पानी को दाखरस में बदल दिया। हाँ, पानी को दाखरस में बदल दिया था। और हमें मालूम है यहूदी नियमानुसार व्यवस्था के अनुसार दाखरस उनके बीच में आनंद को दर्शाता। धर्मशास्त्र बाइबल में पूरे शुरू से अंत तक दाखरस जो है आनंद को दर्शाता है। और यहूदी रीति के अनुसार विवाह समारोह में दाखरस का देना ये सामान्य बात थी, सबको पीने के लिए दिया जाता था। यह कितना नशीला था कितना नहीं था उसके सब बारे में अभी तर्क करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु यह बात जरूर है कि यह दाखरस ऐसी चीज थी जो लोग पीते थे और उसमें वो लोग अपने आनंद को प्रकट करते थे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को अपने काबू में लिया और उस दाखरस की कमी जब हुई, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार उस काम को किया और किस प्रकार दाखरस को लोगों तक पहुंचाया। यीशु मसीह ने कोई जादू नहीं दिखाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सामर्थ को वहां पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों का अलग अलग विचार है, ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोग यीशु मसीह को बहुत अच्छा गुरु होकर मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे एक नैतिक व्यक्ति थे, कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह एक महान पुरुष थे, कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा भविष्यद्वक्ता थे। परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह केवल एक अच्छा गुरु, एक अच्छा भविष्यद्वक्ता, एक महान पुरुष, क्या केवल उतना ही है या उससे बढ़कर है? यीशु मसीह उससे बढ़कर है, इस बात को यहां पर वो दर्शाया। प्रोफेसर C.S. Lewis किसी जमाने के एक अज्ञानवादी पुरुष थे, एग्नोस्टिक, और कुछ समय के बाद उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, मैं एक चीज लोगों को बोलने से मना करना चाहता हूं यीशु मसीह के बारे में, और वो कहते हैं मैं कभी नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह के बारे में कहें कि वो महान पुरुष है, या यीशु मसीह के बारे में कहें कि वो अच्छा गुरु है या शिक्षक है, या यीशु मसीह के बारे में कहे कि वो अच्छा भविष्यवक्ता है। उन्होंने कहा या तो यीशु मसीह के बारे में आप कहें कि वही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं, और उसके सामने दंडवत प्रणाम करें, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें, या तो फिर यीशु मसीह के बारे में कहे कि वो पागल है, अपने दिल के दरवाजे के बाहर से उसको धक्का दे दे, अपने जीवन से धक्का देकर लात मारकर भगा दे। आप अपने जीवन में ये दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हैं। या तो इस बात को बोलकर कि यीशु मसीह पागल है, ही इज अ लुनेटिक, ही इज अ फूल, ही इज अ चीट, लात मारकर बाहर फेंक दे, या तो फिर आप अपने जीवन में उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानकर दिल में स्वीकार करें, दंडवत प्रणाम करें और उसको अपने जीवन का सब कुछ मान लें। आज रात को वचन सुनने वाले मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ इन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हैं। कभी भी आप अधर में ना रहें यीशु मसीह के बारे में कि वो अच्छा पुरुष है, महान पुरुषों में से एक है। नहीं, वो गलत विचार। या तो वो परमेश्वर है या तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आए, और ये जो भाग हमने पढ़ा, इस भाग में से हम चार बातों को परमेश्वर के काम के विषय में देखना चाहते हैं, या मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा में होकर। परमेश्वर के काम के चार बातों को हम यहां पर देखेंगे। यहां पर जो आयत पढ़ी गई, यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह बुलाए गए थे, वहां पर हम अचानक से पढ़ते हैं दूसरी आयत, तीसरी आयत में कि दाखरस घट गया और यीशु की माता यीशु के पास आकर कहती है कि दाखरस नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब देखिए वहां पर चौथी आयत में, 2:4 में प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यहां पर जो वाक्य का उपयोग किया गया है, हे नारी या हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, इस प्रकार के प्रयोग को हम पूरे बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में भी देखते हैं। और पुराने और नए नियम को जब आप पढ़ोगे, इस प्रयोग को कई बार हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात हमें समझ में आती है, क्या है कि ये दो जन जो इस बात को कह रहे हैं, ये लोग दोनों दो अलग अलग स्तर के लोग हैं। आपको कुछ उसी प्रकार का प्रयोग लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में देखने को मिलेगा, जब प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत में जब थे, ग्रासिनियों के देश में जब थे, और ग्रासिनियों के देश में जब एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु के पास आया, वहां पर उसके 28वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार 8:28 में उस प्रयोग को हम देखते हैं, जब उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु को देखा तो वो जोर के चिल्लाकर कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम। तो यहां पर वो इस बात को दर्शाता है कि ये दोनों दो अलग स्फीयर से हैं, दे आर फ्रॉम टू डिफरेंट रॉयल्स। पुराने नियम में भी इस प्रयोग को हम देखते हैं, पहला राजा उसके 17वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर उसके 18 या 19 में सारेफात की विधवा के पुत्र के मरने के बाद जब एलिया वहां पर पहुंचता है, तो सारेफात की विधवा एलिया से बात करते समय पूछती है, क्या तू मेरे पुत्र को मारने के लिए आया। तो वहां पर इसी प्रयोग को हम देखते हैं, मेरा तुझसे क्या काम। दूसरे राजा के पुस्तक में भी हम कुछ उसी प्रकार के प्रयोग को देखते हैं, दूसरा राजा उसके 13वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, उसके 13वीं आयत में भी हम उसी प्रयोग को देखते हैं, मेरा तुझसे क्या काम। तो ये सब जगह हम इस बात को देखते हैं कि दो जन दो अलग अलग स्तर से हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, हे स्त्री, तू इस पृथ्वी में से है, मैं कहां से हूं, मैं स्वर्ग से। हे स्त्री, तू थोड़े समय के लिए है, मैं तो अनंतता से हूं। इस बात को प्रकट करने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर चौथे आयत में आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया, माय आवर हैज नॉट इट कम, मेरा समय अभी नहीं आया। तो परमेश्वर के काम के विषय में सबसे पहली बात जो मैं और आप इस घटना से सीख सकते हैं वह यह है कि परमेश्वर जब काम करता है वो अपने समय में करता है। When God works, He works in His time. परमेश्वर जब काम करता है वो अपने समय में करता है। मेरा समय नहीं आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर आवर या समय के विषय में यूहन्ना बहुत जोर देकर कहता है, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में समय के साथ जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय के बारे में कहते हैं तो वो उस समय के बारे में कह रहे थे जब उनको क्रूस पर अपना प्राण को बलिदान करना था, और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा समय अभी नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक समय था। प्रभु यीशु मसीह का काम, परमेश्वर का काम, वो अपने समय में करता है। वो समय के पहले नहीं करेगा और समय के बाद भी नहीं करेगा। हम योहन्ना रचित सुसमाचार में ही हम कुछ प्रयोगों को देख लें। 7:6 में हम पढ़ते हैं, योहन्ना रचित सुसमाचार 7:6 देखिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार 7:6 तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। मेरा समय अब तक नहीं आया। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं मेरा समय अब तक नहीं आया। 13 में आ जाइए, 13 और उसकी पहली आयत, 13:1 13 उसकी पहली आयत।
अब पतक के पर्व से पहले यह जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची,
हाँ मेरी घड़ी आ पहुंची है, यहाँ मेरा समय आ गया है, माय आवर इज कम। पहले वो बोलता है मेरा घड़ी या मेरा समय नहीं आया, अब वो कह रहा है जब उसको मालूम हुआ कि मेरा समय आ गया है, तो वो उस काम को दर्शा रहा था जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण क्रूस पर बलिदान कर देगा। मेरा समय नहीं आया। वुमन माय आवर इज नॉट कम। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन गॉड वर्क्स ही वर्क्स इन हिज राइट टाइम। परमेश्वर जब काम करता है वो अपने समय में काम करता है। 17 में आ जाइए, योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 और उसकी उसकी पहली आयत को जरा देखिए। प्रभु यीशु मसीह जब पिता से प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर उस बात को देखते हैं।
ये बातें कहकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहा,
हे पिता, घड़ी आ पहुंची है। हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी है? हाँ, मेरे प्राण को बलिदान करने की वह घड़ी। तो ये घड़ी शब्द या समय शब्द जो है यूहन्ना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। समय हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए समय महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, भारतीय लोगों को समय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 3-3 रेलवे स्टेशन में खड़े रहेंगे रेलगाड़ी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ पूछेगा भी नहीं, स्टेशन मास्टर से भी नहीं पूछेगा सर क्यों गाड़ी लेट क्यों हो रही है आखिर, खड़े रहेंगे, सब खड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक में चले जाइए, लोग खड़े रहेंगे, 2-2 खड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समय की कोई कीमत ही नहीं है हमारे पास। एम्प्लॉयर कहता है ड्यूटी करो, 10-12 भी ड्यूटी करेंगे, परिवार भी नहीं चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, कलिसिया भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ड्यूटी कर रहे हैं। समय का कोई कीमत ही नहीं है हमारे पास। मेरे और आपके लिए समय महत्वपूर्ण है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए समय महत्वपूर्ण था। परमेश्वर अपने समय में ही काम कर सकता है, वो अपने समय में काम किया। आपको मालूम है उद्धार के लिए भी उसने अपने समय में काम किया है। गलतियों की पत्री 4 उसकी 4 को जरा पढ़िए, हमको मालूम है क्या लिखा है वहां पर है? गलतियों की पत्री 4:4 गलेशियंस चैप्टर 4:4 क्या पढ़ते हैं वहां? इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ है, प्रियसो गलतियो चार का चार।
हाँ,
परंतु जब समय पूरा हुआ, गैलेशियंस 4:4, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर को समय मायने रखता है। He is trans time, he is beyond time, he is beyond space, he is beyond everything. But in relation to you and me, he has his own time. परमेश्वर समय के अतीत है, काल के अतीत है, परंतु जब मेरे और आपके संबंध में परमेश्वर व्यवहार करता है तो उसके लिए समय महत्वपूर्ण है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जब काम करता है, परमेश्वर के काम के लिए अपना निर्धारित ठहराया हुआ समय है, परंतु हम लोग अपना पांव हाथ बहुत मारते हैं। समय के पहले हमको सब कुछ चाहिए। समय का इंतजार कर सकते हैं, वो घड़ी के लिए इंतजार कर सकते हैं। पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में इब्राहिम और सारा के जीवन में जब परमेश्वर ने बर्ताव किया तो परमेश्वर समय के महत्व को दिखाया। इब्रानियों उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को जरा देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 14। परमेश्वर के लिए क्या समय महत्वपूर्ण है? मैं निर्धारित समय पर, परमेश्वर इब्राहिम को वादा कर रहा है, मैं निर्धारित समय पर क्या करूंगा?
अर्थात
अगले वर्ष इसी समय
तेरे पास फिर
आऊंगा। परमेश्वर के लिए समय महत्वपूर्ण है, मेरे और आपके लिए समय महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के कार्य के लिए अपना निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय के पहले परमेश्वर काम नहीं करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 21वां अध्याय उसके तीसरी आयत को, दूसरी आयत को पढ़िए, क्या परमेश्वर ने कुछ किया? उत्पत्ति की पुस्तक 21वां अध्याय दूसरी आयत, जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 2। ठीक उसी समय पर, ध्यान दे रहे आप, ठीक उसी समय पर जिसके विषय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था। परमेश्वर जब काम करता है वो अपने समय में काम करता है। मेरे और आपके हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, मुझको और आपको परमेश्वर का सहयोग करना है, परमेश्वर के समय के लिए मुझे और आपको इंतजार करना है। अगर समय के लिए इंतजार नहीं करेंगे तो उसकी समस्या अलग है, हमको मालूम है ना। शत्रक मेषक अभेदनगो समय का इंतजार किए अंत के समय तक, पता नहीं मैं इसको बारे में बताया था कि नहीं आपको पहले भी, समय के अंत तक उन्होंने इंतजार किया। जब तक वे लोग आग में फेंके नहीं गए तब तक उनको नहीं मालूम था कि वे छुटकारा प्राप्त करेंगे। जब आग के अंदर डाले गए उसके बाद उनको मालूम हुआ, जब चौथा व्यक्ति उनके साथ चल रहा था, जो फेंकने गए वे लोग चल गए, परंतु ये लोग तीनों आग के अंदर चल रहे हैं। समय, ठीक समय पर परमेश्वर काम करता। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप कितने बार परेशान हो गए, हाथ पांव मारते रहे, हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा। पतरस पानी में उतरा चलने के लिए यीशु मसीह के साथ, है ना, तो यीशु मसीह ने उसकी मदद और सहायता की क्या? Did the Lord help him? Yes, he helped him. कब? ठीक समय पर, जब वह डूबने लगा। प्रभु के कार्य करने में अपना समय है, और अगर प्रभु के इन सब कामों में अपना समय है, उद्धार के लिए जो उसने योजना तैयार की उसमें भी उसका समय था। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई, अनंतता से उसने योजना बनाई, और अपने पुत्र को जब समय पूरा हुआ इस संसार में मेरे और आपके लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, है? दो महीने पहले से तैयारियां हो जाती है, प्रोग्राम शेड्यूल तैयार हो जाता है, सिक्योरिटी आती है, चेक करते हैं कौन से रोड से जाएंगे, कहाँ कहाँ वो रुकेंगे, रात को वो कहाँ रुकेंगे, कौन उसके लिए खाना बनाएगा, ये सारी बातों की योजना होती है। परमेश्वर ने जब उद्धार तैयार किया उसने योजना बनाई, और जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने स्त्री के संतान के रूप में व्यवस्था के अधीन में होकर अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर के समय के लिए मैं और आप इंतजार करें। अगर परमेश्वर के समय के लिए मैं और आप इंतजार नहीं करेंगे, हमारे जीवन में परेशानियां और गड़बड़ियां होंगी। बच्चों के शादी के विषय में आती है तो माता पिता बहुत पांव हाथ मारते हैं। बच्चों की पढ़ाई के विषय में जब आते हैं तो माता पिता बहुत हाथ पांव मारते हैं, कितना डोनेशन देना है, कहां देना है, कितना लाख देने से चलेगा, काहे को डोनेशन और काहे को घूस देना। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ करेगा। क्या मैं और आप परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर सकते हैं? हमने इस बात को नहीं सीखी, इसलिए हम अपने तरीके को अपनाते हैं, अपने तरीके को अपनाते हैं। समय का इंतजार करें। इब्राहिम और सारा ने समय का इंतजार नहीं किया, प्रभु के समय के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया, तो हमको मालूम है क्या हुआ था। आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात जो आप लोगों के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, परमेश्वर का काम परमेश्वर के समय में होता है, या परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने समय में करता है। धर्मशास्त्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ठीक समय पर अपना काम किया। एलिया को ले आया, सेवा के लिए बुलाया, कृत नाले के पास पहुंचाया, कौवा उसके लिए भोजन ले आ रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, जो प्राणी दूसरों से छीनता है, है उसके हाथ में प्रभु देता है काम करने के, और उसके द्वारा एलिया के लिए भोजन खिलाता है। अचानक से क्या होता है, नाला नाला सूख गया। परंतु जब नाला सूख गया तो उसने किसी और को तैयार किया। किसको तैयार किया? सारे पास की विधवा को तैयार किया। क्या परमेश्वर अपने समय में काम करेगा? हे परमेश्वर के दासों, जो प्रभु की सेवा करते हैं, मैं और आप उस परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। कभी कभी हमको लगेगा कि गरीब का नाला सूख रहा है, गरीब के नाले में पानी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? परंतु परमेश्वर सारे पात में विधवा को तैयार करती है। आपको मालूम है सारे पात की विधवा में विधवा को परमेश्वर ने एलिया को भोजन खिलाने के लिए तैयार नहीं किया था, है? परंतु उस विधवा और उसके बेटे को आगे जीने के लिए तैयार किया था। आपको मालूम नहीं? अगर एलिया को वो लोग नहीं खिलाते तो उसी दिन वे लोग क्या हो गए होते? क्या होता? हाँ, मर गए होते। परमेश्वर अपने समय में अपना काम करता है। तो क्या मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करने को सीखेंगे? प्रभु कहता है मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु अपने समय में काम किया। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं, उसी अध्याय के हम सातवीं आयत को जरा देखें। योना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसकी सातवीं आयत, और वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, या मटकों को पानी से भर दो। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो यह है, परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने तरीके से करता है। ही डज इट इन हिज वे। When God works, He works at His time. When God works, He works in His way. परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने तरीके से करता है। गुरुवर, आप क्या कह रहे हो? पानी की कमी नहीं है हमारे पास। काय की कमी है? हैं? काय की कमी है? दाखरस की कमी है। आपको कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? आपने गलत तो नहीं सुना? हमने आपसे ये नहीं कहा कि पानी कम हो गया है, हम आपसे कह रहे हैं दाखरस कम हो गया। प्रभु उनको देखकर मुस्कुराया, कहता मटकों में पानी भर दो। परमेश्वर जब काम करता है तो वो अपने तरीके से काम करता है। अरे अंगूर का रस कम हो गया, दाखरस कम हुआ, मटकों में पानी भरने से दाखरस कहां से मिलेगा? क्या अजीब बात है। प्रभु अगर तू कहता बाजार में जा अंगूर लेके आ मिक्सी में फेंट दे और रस निकाल और दे दे तो मैं समझ सकता हूं ये क्या हो रहा है मटकों में पानी भर दो। प्रभु कहता है मैं जब काम करता हूं तो मैं अपने तरीके से काम करता हूं। हम लोग प्रभु से अपने तरीके से काम करने की कोशिश करवाते हैं, है ना। प्रभु से कहता प्रभु दिस इज नाइस फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है। प्रभु कहता नहीं तेरे लिए ये अच्छा है। समझ रहे हैं आप? अगर सांभार कम हो जाए तो क्या करना पड़ता है बहनों से पूछेंगे आप? पानी मिलाने से नहीं होगा, चावल का मार मिलाना पड़ता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा। बोला चावल का मार है ना उसको मिला दीजिए, बहुत बढ़िया सांभार हो जाएगा। अंगूर का रस कम हो गया क्या करना है? अंगूर खरीद के ले आओ, निचोड़ो और रस दो। परंतु प्रभु आप घर क्या कर क्या कह रहे हैं? व्हाट आर यू सेइंग? फिल द वाटर पॉट्स विद वाटर। ये कैसे हो सकता है? प्रभु कहता है मैं अपने तरीके से काम करता हूं। परमेश्वर ने उद्धार की योजना जो तैयार की वो अपने तरीके से उद्धार की योजना तैयार की, अपने समय में किया, अपने तरीके से किया। उसने देखा उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपने पुत्र को इस संसार में मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए भेजूं, उसे क्रूस पर बलिदान करूं और उसे मार डालूं। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं था प्यारों। आज सुबह बच्चों के साथ हम जब समय बिता रहे थे नामान के बारे में हम सीख रहे थे। नामान से एलिशा भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा? यरदन नदी में जा और सात बार डुबकी लगाओ। हम लोग कोरस भी गाते ना, डुबकी लगा ही रे बाबा डुबकी लगाई, है ना। हाँ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितने बार। यू नो नामान हैड ए प्रॉब्लम, नामान को बड़ी समस्या आई, गुस्सा हो गया एलिशा के ऊपर। हे एलिशा, क्या मेरे देश के अबाना और पारपर नदियां यर्दन की नदी से साफ नहीं है? मैं क्या उसमें जाकर डुबकी नहीं लगा सकता? एलिशा कहता है यदि तू चंगा होना चाहता है तो परमेश्वर का तरीका यह है कि तुमको यर्दन नदी में डुबकी लगाना होगा। अबाना और पारपर में डुबकी लगाए तो तू चंगा नहीं हो सकता। एलिशा सोचा, नामान ने सोचा कि मैं एलिशा के पास पहुंचूंगा, वो वहां खड़े हो जाएगा, जादू की डंडी ले आएगा, ऐसे ऐसे हिलाएगा और कहेगा एंकी फैंकी अकस फकस कमांड को और मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। परंतु नहीं, एलिशा तेरे को यर्दन नदी में डुबकी लगानी है। अब आना और पर है, परंतु डुबकी कहां लगाना है? यर्दन नदी में लगाना है। उद्धार के लिए कई मार्ग लोगों ने तैयार किया, परंतु उद्धार पाना हो तो तुझे ईश मसीह के मार्ग में आना होगा, और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि तरीका परमेश्वर ने यही मेरे और आपके लिए खोला है। इसलिए ईश मसीह कहते हैं मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने उद्धार अपने तरीके से तैयार किया, कितना बड़ा उद्धार। और इसलिए इब्रानियों का लेखक पूछता है कि इतने बड़े उद्धार को जो परमेश्वर ने तैयार किया तुम क्यों कर बच सकते हो? परमेश्वर ने यह उद्धार मेरे और आपके लिए तैयार किया। धन्य है वे जो इस मार्ग में आए और इस उद्धार को अपना कर लिए, यीशु मसीह को पहचान लिए, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। यहां पर बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पापों की क्षमा का अनुभव नहीं किया, आज रात को मेरा आपसे अनुरोध है इस यीशु मसीह को ग्रहण करें, पापों की क्षमा को अनुभव करें, यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता और प्रभु होकर स्वीकार कर लें। इब्राहिम और सारा के जीवन का उदाहरण फिर मेरे सामने आ रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान का वादा दिया था, है ना। क्या कहा था? तेरे खोख में से, तेरे में से, फ्रॉम योर बोसम। इब्राहिम और सारा ने योजना बनाई, यार इतने साल से वेट कर रहे हैं, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहिए अब, है ना। और सारा ने योजना बनाई, बोले परमेश्वर ने क्या कहा है? तेरे अपने में से संतान आएगा, चलो अपन कुछ और तरीका देख लेते हैं, है ना। भेज दिया, किसको भेजा? हाजार को भेज दिया, संतान हुआ, संतान हुआ, परंतु आपको मालूम है क्या हुआ उसके बाद, और उसका परिणाम आज भी भुगत रहे, उसका परिणाम आज भी भुगत रहे। परमेश्वर के तरीके को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हम उसका परिणाम पूरे जिंदगी भर भुगतेंगे। प्यार परमेश्वर का तरीका मैं और आप अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर ने जो तरीका ठहराया उस तरीके को लेकर, और जब उस तरीके के अनुसार चलेंगे तो मैं और आप अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे। कभी कभी कहा जाता है जोश में होश नहीं भूलना, जोश में होश नहीं खोना, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, आप लोग क्या नहीं बोलते होंगे, हमारे यहां बोलते हैं जोश में होश नहीं खोना। कई बार जोश में होश खो देते हैं, दाऊद के जीवन में वैसे ही हुआ है ना। परमेश्वर के संदूक आर्क को वो लाना चाहता था है ना, बड़े जोश जोश में ले आया, क्या हो गया, कई लोग मर गए, नाश आ गया। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से होता है, मैं और आप अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं प्यार। तो परमेश्वर के काम के लिए हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, और परमेश्वर के तरीके से मुझे और आपको उस काम को करना है। अगर हम परमेश्वर के तरीके में उस काम को नहीं करेंगे तो मैं और आप निश्चित रूप से हमारे जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और यह अवश्य है कि मैं और आप जब काम करते हैं हम परमेश्वर के तरीके से करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा विचार तेरे विचार नहीं है, मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय उसके 8 और 9 आयत को जरा पढ़ लीजिए, वहां पर वो बात परमेश्वर स्पष्ट मुझे और आपसे कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय 8 और 9 हाँ पढ़िए ब्रदर जोर के। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, हाँ ना मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है,
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर।
ओ आकाश और पृथ्वी का अंतर है, मेरे और तुम्हारे सोच, मेरे और तुम्हारे गति में आकाश और पृथ्वी का फर्क है, इतना फर्क है। तो परमेश्वर जब काम करता है वो अपने सोच और अपनी गति के अनुसार काम करता है, मेरे सोच और मेरे गति के अनुसार काम नहीं करता। मेरी आवश्यकता यह है कि उसको मैं अपने जीवन में स्वीकार कर लूं, ग्रहण कर लूं। क्या आज रात को हम अपने जीवन में इस निर्णय को लेंगे, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि तू जिस प्रकार काम करना चाहता है उस प्रकार मेरे जीवन में तू काम कर। वो दर्दनाक हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है, भयंकर हो सकता है मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया था, आपको मालूम है अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, और जब परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में काम किया बहुत दर्द भरा अनुभव था उसके लिए, बहुत दर्द भरा अनुभव, परंतु विजयी अय्यूब ही रहा, परमेश्वर ही रहा। अय्यूब को परमेश्वर ने क्यों चुना? अय्यूब को परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था कि मेरा भक्त मुझे कभी नहीं ठुकराएगा और मेरा काम उसके अंदर सिद्ध होगा। आज मालूम है अय्यूब का जीवन परमेश्वर और शैतान के बीच में सैंडविच हो रहा था, परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई को अय्यूब झेल रहा था। शैतान ने क्या कहा, तू तो उसको सुरक्षित रखा है, तू तो उसको संभाले रखा है, तू तो उसको सब कुछ दे दिया, तो फिर वो तेरे पीछे क्यों नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता छू के देख ले, छू के देख ले। परमेश्वर अय्यूब पर भरोसा किया वो अपने काम को पूरा करने के लिए। आज रात को मैं आपसे पूछूं क्या परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर भरोसा कर सकता है अपने काम को पूरा करने के लिए? क्या मुझे और आपको देखकर वो ये कह पाएगा आई कैन ट्रस्ट दिस मैन, आई कैन ट्रस्ट दिस वुमन बिकॉज ही और शी विल नॉट फेल मी। मैं अपने काम को अपने तरीके से इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा पूरा कर सकता हूं। उद्धार का काम परमेश्वर ने अपने तरीके से तैयार किया, और उस उद्धार का काम के द्वारा जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। आपके उद्देश्य कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि परमेश्वर के तरीके से वो काम पूरा नहीं होता तो उसका परिणाम बहुत ही नुकसानदायक होगा। नो मैटर हाउ बेस्ट योर इंटेंशंस आर, इफ गॉड्स वर्क इज नॉट डन गॉड्स वे, द रिजल्ट विल बी डैमेजिंग। द रिजल्ट विल बी डैमेजिंग। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर सहायता करे कि मैं और आप परमेश्वर के काम को परमेश्वर के तरीके से करें और परमेश्वर को अपने तरीके से हमारे जीवन में काम करने के लिए हम अनुमति दें। उसमें किसी भी प्रकार के कई प्रकार के नुकसान हमको उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने अय्यूब का उदाहरण आपके सामने रखा। परमेश्वर ने अपना तरीके से उद्धार का काम जब तैयार किया तो उसको बिल्कुल बिल्कुल भी हिचक नहीं हुई कि अपने पुत्र को वो कुचल दे। कौन पिता अपने पुत्र को कुचलते हुए देख सकता, कौन पिता अपने पुत्र को तड़पते हुए मरते देख सकता है। पिता हमेशा कहेगा बेटे को बचा, मुझे मार ले, मुझे मार ले, परंतु पिता ने अपने मुंह को फेर लिया। जब क्रूस पर पड़े होकर यीशु मसीह चिल्ला रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कोई आवाज पिता ने नहीं दी, कोई सांत्वना पिता से उसे प्राप्त नहीं हुई। वह इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि मेरा काम मेरे पुत्र के जीवन से पूरा हो रहा है, मनुष्य जाति का उद्धार को मैं तैयार कर रहा हूं। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर जब काम करता है वो अपने तरीके से करता है। तीसरी बात, योना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में आ जाइए और उसके तीसरी बात को देख लेंगे, और वहां पर लिखा है दसवीं आयत, 2:10, 2:10।
प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा काम करता है, और जब लोग देखकर तृप्त हो जाता है तब गलिया,
तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तीसरी बात मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अपने समय में काम करता है और अपने तरीके से काम करता है तो उसका परिणाम सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। द रिजल्ट इज द बेस्ट, और यू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट when God works in his time, when God works in his way, the result is the best. मनुष्य जब कुछ करता है तो सबसे पहले अच्छा देता है और बाद में घटिया देता है, क्वालिटी कम होते जाती है। आप रेलगाड़ी वगैरह में सफर किए होंगे, मैं तो बहुत सफर करता हूं। पैंट्री वालों से मैं हमेशा कहता हूं, यार तुम लोगों का खाना दिन पे दिन घटिया होता जा रहा है। शुरू शुरू में आप लोग जब खाना देते तो बहुत अच्छा लगता था, और ये मनुष्य का स्वभाव है, शुरू में अच्छा अच्छा करते हैं परंतु समय बीतता जब जाता है तो उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। परंतु आपको मालूम है परमेश्वर की क्वालिटी कभी कम नहीं होती, परमेश्वर की क्वालिटी कभी, मैंने पहले कहा परमेश्वर गुणवत्ता पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। ही अप्रिशिएट्स क्वालिटी एंड ही वॉन्ट्स क्वालिटी। अक्सर लोग जब पीकर है, जब पीकर तृप्त हो जाते हैं तब मध्यम देते हैं, परंतु तू अब तक अच्छा दाखरस, अब तक अच्छा दाखरस। अरे प्रधान, भोज के प्रधान, तुझे नहीं मालूम ये दाखरस अब किसने बनाया, किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, ये दाखरस यीशु मसीह ने बनाया है, इसलिए अभी भी अच्छा है। आपको मालूम है उद्धार की योजना किसने तैयार की? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तैयार किया, यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। यीशु मसीह ने अपने समय में, या परमेश्वर ने अपने समय में अपने तरीके से उद्धार की योजना तैयार की। आपको मालूम है उसका परिणाम क्या है? What is the result of salvation? है, क्या है उसका परिणाम? है अनंत काल जीवन है, परंतु उससे क्या बना? यस, परमेश्वर की कलीसिया। The end result of salvation is the church of God, the bride of Christ. The best result. आपको मालूम है इस संसार में परमेश्वर की कलीसिया की सुंदरता के समान और कोई जीवन नहीं है, और कोई जीव नहीं है। The church is the product of God's work of salvation. In other words, you and me are the product of God's work of salvation. मैं और आप उद्धार का परिणाम है। मैं और आप परमेश्वर के उद्धार के कार्य का परिणाम है। परमेश्वर ने अपने समय में अपने तरीके से जब उस उद्धार के काम को तैयार किया, उसका परिणाम आज मैं और आप हैं। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की मंडली, जिसे वो बिना झुर्री बिना दाग के वो पवित्र और निष्कलंक होकर प्रभु के लिए तैयार किया है और तैयार कर रहा है। इब्रानी के पत्री के भाषा, लेखक के भाषा में कहा जाए तो वहां पर लिखा है 12वें अध्याय के 2वीं आयत में, लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने एक आनंद को आगे देखा था। He for the joy that was before him endured the cross, suffered the shame. क्या था वो आनंद? मैं और आप थे आनंद। We were the joy for him. You and I were the joy for him. वो आनंद प्रभु मुझे और आप में पाया, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। आपको मालूम है मैं और आप इस संसार के सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और परमेश्वर मुझे और आपको कितना बहुमूल्य होकर समझता है। We are so precious to him. Do you know that? We are so precious to him. So precious. परंतु सवाल यह है, उस प्रेशियसनेस को हम अपने जीवन में दिखाते हैं या नहीं? हम अपने जीवन के कार्यों में उस बहुमूल्यता को प्रकट करते हैं या नहीं? वो सवाल है। मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही प्रेशियस है। साधारण पानी समय में ही बदल गया, क्षण भर में बदल गया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो, और फिर क्या कहा? दे दो। उद्धार जो प्रभु देता है वो भी वैसी है, जो विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। कितना देर लगता है? कितना देर लगता है? क्षण भर में, क्षण भर में, a moment of time, within a twinkling of an eye, प्रभु मेरे और आपके जीवन को बदल देता है। और इसलिए कहा है दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वीं आयत में, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो क्या है? वो नई सृष्टि है। उसके बाद क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब। क्या ये नयापन हमारे जीवन में है? All things are become new. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, everything has become new. नया जीवन मिल गया, गीतकार कहता है, गाता है, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। हम लोग गाते तो जरूर है, और भी गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया क्या हो गया? हाँ, मेरा जीवन बदल गया। क्या बदला? जीवन ढूंढना पड़ेगा, क्या बदला है? क्या उस गुणवत्ता को हम अपने जीवन में प्रकट कर पा रहे हैं? द रिजल्ट इज द बेस्ट। गॉड गिव्स द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया है। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम अपने नहीं हो, प्रभु ने मुझे और आपको मंदिर बना दिया। ये सत्य अगर हमारे भारतीय लोग समझ गए होते मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए वे कभी लड़ाई नहीं करते है ना। मुझे और आपको उसने चलता फिरता मंदिर बना दिया, भिलाई से मंदिर चलकर मुंबई आया और ये मंदिर आज केरल जा रहा है। हम सबको उसने मंदिर बना दिया, चलता फिरता मंदिर, मुझे और आपको मंदिर बना दिया। परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। सी द रिजल्ट ऑफ गॉड्स वर्क। परमेश्वर का काम अपने समय में अपने तरीके से, और यह मेरे और आपके जीवन का फर्क है। हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बदल दिया है, मुझे और आपको उसने बना दिया है। क्यों बनाया? इफिसियों की पत्री में पौलुस की भाषा में कहा जाए, इफिसियों 2:10, इफिसियंस चैप्टर 2:10, क्योंकि हम उसके हाथ के कारीगरी है। फॉर वी आर इज वर्कमैनशिप, वी आर इज वर्कमैनशिप, हम उसके हाथ के कारीगरी है। हम लोग बहुत ही अलग बनाए गए हैं। वो कारीगरी शब्द का मतलब वो है वर्कमैनशिप, वो ही मैं हूं। कारीगरी, वर्कमैनशिप, बहुत ही विशेष बनाए गए। कुम्हार जब बर्तनों को बनाता है, मान लीजिए वो 100 बर्तनों को बनाता है और उसमें से अगर वो एक बनाता है तो वो उसका वर्कमैनशिप है, कारीगरी। मैं और आप परमेश्वर के सृष्टि में क्या है? उसकी कारीगरी है। वी आर हिज वर्कमैनशिप। इट मीन्स वी हैव बीन क्रिएटेड वेरी स्पेशल फॉर व्हाट? अनटू गुड वर्क्स, भले काम के लिए। हमारे भले काम प्रकट होते हैं क्या? प्रभु सहायता करे कि हमारे भले काम प्रकट हो। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। बोलते रहूंगा तो विचार है परंतु समय नहीं है। आखिरी बात, आज सुबह भी हमने उस पर विचार किया था, उसकी 7वीं आयत को जरा पढ़ लें। बात योहन्ना 2:7,
यीशु ने उनसे कहा, हाथों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनके मुंह को भर दिया,
और उन्होंने मुहामुह। दूसरे शब्दों में चौथी बात हम यह देखते हैं, परमेश्वर का कार्य तब असर करता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। द वर्क ऑफ गॉड इज इफेक्टिव व्हेन वी आर ओबीडियंट, जब हम आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने अपने समय में अपने तरीके से योजना तैयार की, उद्धार को तैयार किया, परंतु उस उद्धार को अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए कभी भी काम में नहीं आएगा। इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर अस। मुझे और आपको प्रभु के बात को मानना है, उसके नीचे उसके 5वीं आयत को जरा पढ़िए, 2:5।
माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना।
जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आज्ञाकारिता। समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, प्रभु मेरी और आपके जीवन में संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। He expects implicit obedience। और तब परमेश्वर का काम मेरे और आपके जीवन में उसकी परिपूर्णता देखी जाएगी। बहुत साल इंतजार करने के बाद इब्राहिम को पुत्र प्राप्त हुआ। बहुत साल इंतजार किया, परंतु उस पुत्र को बलिदान करने के लिए इब्राहिम ने एक दिन उसे कहा, पिता से कहा, तू अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, जिससे तू प्रेम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा था, इब्राहिम अब तक तो तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता था, परंतु अब तू अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करने लगा है। ये पुत्र किसका है? ये मेरा पुत्र है, परंतु अब तू क्या कहता है? ये मेरा है। परमेश्वर कहता है तू अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है। इब्राहिम तू मुझसे प्रेम करता था, अब तो अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है। एक काम कर, उसको क्या कर दे? चढ़ा दे मेरे। आपको लगता है इब्राहिम कुछ सोचा? آگے پیچھے نہیں سوچا. ہم وہاں پڑھتے ہیں بھور ہوتے ہی وہ اٹھ گیا, بھور ہوتے ہی, صبح ہوتے ہی, بنا کوئی سوال کیے. To obey the commandment of God, we need to do at the earliest. Obedience makes us to do things at the earliest. بھجن سہیتا 119 کا 60 ہم سب کو معلوم ہے وہ آیت, ذرا پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا. بھجن سہیتا 119 اس کا 60, Psalm 119:60. میں نے تیرے آگیاؤں کو ماننے میں ولمب نہیں, دیر نہیں, پھرتی کی. I have delayed not to keep your commandments. میں نے تیرے آگیاؤں کو ماننے میں دیر نہیں, ولمب نہیں, پرنتو پھرتی کی ہے. پربھو کی آگیا کا پالن میں ہم پھرتیلا دکھائیں گے. پھرتی کے ساتھ پربھو کی آگیا مانیں گے یا پربھو سے کہیں گے رک جا, رک جا بھائی, رک جا, تھوڑی دیر اور رک جا. اگر آگیا کو ہم نہیں مانتے ہیں اس کے پرینام کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے. آج رات کو پربھو سے کہے پربھو میں تیری آگیا کو پاننے کے لیے تیار ہوں. وہی پترس کا ادھارن, وہ گھٹنا مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے. لوکا 5:5 میں ہم پڑھتے ہیں, 5ویں ادھیائے میں ہے نا, گنسرت کے جھیل میں جال کو گھیرے میں ڈالو. آج صبح بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا, کاسٹ یور نیٹس انٹو دی ڈیپ. پترس کیا کہتا ہے, تو بھی تیرے کہنے کو, نیور پلس ایٹ یور ورڈ. اینڈ دیٹ از واٹ از امپلیسٹ اوبیڈینس. اور پربھو میری اور آپ کے جیون میں وہی آگیا کاریتا کو چاہتا ہے. تو چار باتیں پرمیشور کے کام کے وشے میں ہم نے دیکھا. سب سے پہلی بات, پرمیشور جب کام کرتا ہے تو وہ اپنے سمے میں کرتا ہے. دوسری بات, وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے. تیسری بات, اس کا پرینام سب سے اچھا ہوتا ہے. اور چوتھا, وہ تبھی اثر کرے گا جب ہم آگیاکاری بنتے ہیں. آج رات کو کیا آپ آگیاکاری بنیں گے؟ پربھو سے کہیں گے ہاں پربھو جو کچھ تو کہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. پربھو ہماری سہایتا کرے, اپنے سروں کو چکا لے.